नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर बात कर रहे हैं, युग की मांग, प्रतिभा परिष्कार भाग एक। ये 1988 से 90 के दौर में लिखी गई थी पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की, जो क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला है उसी का एक हिस्सा है ये। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये प्रतिभा असल में है क्या और आज के समय में इसकी क्या जरूरत है।
जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, पूज्य गुरुदेव ने तो इस पूरे साहित्य को अपना ज्ञान शरीर कहा था। उन्होंने वसंत पंचमी 1990 को वंदनीय माता जी से कहा भी था कि मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा और इसे मेरे क्रांति धर्मी साहित्य के रूप में जन जन तक पहुंचाना है। तो ये पुस्तक खासतौर पर व्यक्ति की जो अंदर की क्षमता है, जिसे प्रतिभा कहा गया है, उसे जगाने पर जोर देती है और फिर उसे सही दिशा देने की बात करती है।
तो फिर चलिए इसी को समझते हैं। पूज्य गुरुदेव के नजरिए से ये प्रतिभा, ये है क्या आखिर? क्या ये कोई डिग्री है या कोई खास हुनर?
नहीं नहीं, यहाँ प्रतिभा का अर्थ उससे कहीं ज्यादा गहरा है। पुस्तक इसे व्यक्ति के भीतर की प्राण अग्नि कहती है।
अच्छा, आत्मबल।
हाँ, जो फिर साहस, विवेक यानी सही समझ और एक सुव्यवस्था के रूप में बाहर प्रकट होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो मतलब ऊपर से मिल जाती है, इसे तो प्रयास करके जगाना पड़ता है, तराशना पड़ता है।
ये दिलचस्प है। मतलब प्रतिभा कहीं छुपी हुई है, उसे बस बाहर लाने की जरूरत है। पुस्तक में शायद लोगों के अलग अलग स्तरों का भी जिक्र है।
हाँ हाँ, बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव में मोटे तौर पर कुछ स्तर बताए हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो दूसरों पर निर्भर हैं, उन्हें हीन कहा गया। फिर वो हैं जो योग्य तो हैं पर बस अपने मतलब तक ही सीमित है, सामान्य लोग, प्रजाजन कह सकते हैं। और फिर आते हैं प्रतिभाशाली लोग, ये नेतृत्व करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं।
और इनसे भी ऊपर?
हाँ, सबसे ऊंची श्रेणी है देव मानवों की या महापुरुषों की। ये वो हैं जो अपनी प्रतिभा का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके भले के लिए, मतलब लोक मंगल के लिए करते हैं, और साथ ही खुद को और बेहतर बनाने, आत्म परिष्कार में लगाते हैं।
और पुस्तक के हिसाब से ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत क्यों महसूस हुई, खासकर उस समय जब ये लिखी जा रही थी?
देखिए, पुस्तक कहती है कि हम एक युग संधि के दौर से गुजर रहे हैं। अब ये युग संधि सिर्फ समय का बदलना नहीं है, ये असल में मूल्यों का, जीने के तरीकों का एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव है।
एक बड़ा मोड़।
हाँ, एक निर्णायक मोड़। एक तरफ तो समाज में काफी समस्याएं हैं, गिरावट है, अवांछनीयताएं हैं, तो दूसरी तरफ एक नए, एक बेहतर युग, जिसे सतयुग कहा गया है, उसके निर्माण की एक प्रबल संभावना भी दिखती है।
यानी चुनौतियां भी हैं और अवसर भी।
बिल्कुल। और ऐसे ही निर्णायक समय पर समाज को संभालने के लिए, उसे सही दिशा देने के लिए, सामान्य स्तर से ऊपर उठी भी प्रतिभाओं की जरूरत पड़ती है, प्रखर प्रतिभाओं की। जैसे सोचिए, महाभारत युद्ध के समय अर्जुन की भूमिका थी, या रामायण काल में हनुमान जी और अंगद जैसे पात्रों की जरूरत पड़ी थी। मुश्किल समय हमेशा ऐसी खास प्रतिभाओं को सामने लाता है।
समझ गए। तो अगर प्रतिभा इतनी जरूरी है और इसे जगाना भी पड़ता है, तो फिर इसका तरीका क्या है? पुस्तक कुछ बताती है इस बारे में?
हाँ, बिल्कुल बताती है। पुस्तक का एक मुख्य संदेश ही यही है कि प्रतिभा कोई रहस्यमय चीज नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की कुछ आदतों या कह लें कि सूत्रों का नतीजा है। चार मुख्य सूत्र बताएं।
अच्छा, चार सूत्र, कौन कौन से?
पहला है अपनी क्षमताओं का विकास, मतलब आलस्य प्रमाद छोड़कर सक्रिय और जागरूक बनना। दूसरा है एक आकर्षक और भरोसेमंद व्यक्तित्व का निर्माण करना, जिसमें अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, विनम्रता, ये सब आता है।
ठीक है, ये दो हुए और बाकी?
तीसरा है जीवन में सुव्यवस्था लाना, अपने समय का, अपनी मेहनत का, अपने विचारों का, साधनों का, सबका सही नियोजन, सही इस्तेमाल करना। और चौथा सूत्र है अग्रगमन, यानी पहल करने का साहस रखना, आत्मविश्वास, और जरूरत पड़ने पर सही काम के लिए आगे बढ़ना, भले अकेले ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। और ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की बातें नहीं है, इन्हें जीवन में उतारना होता है।
मुझे ये बात खास तौर पर अच्छी लगी कि पुस्तक कहती है प्रतिभा के बीज तो हर किसी में मौजूद है, बस उन्हें जगाने और सींचने की जरूरत है। ये काफी उम्मीद देती है बात।
हाँ, बिल्कुल।
लेकिन क्या ये सब आसानी से हो जाता है? क्या इसका कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता?
नहीं नहीं, आसानी से तो नहीं। पुस्तक साफ कहती है कि इसका एक मूल्य चुकाना पड़ता है, और वो मूल्य है अपने छोटे छोटे स्वार्थों से, संकीर्णता से ऊपर उठना, समाज की भलाई के लिए, परमार्थ के लिए अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपने साधनों का कुछ अंश लगाना। जैसे सोना आग में तपकर ही तो कुंदन बनता है ना।
हाँ।
वैसे ही व्यक्ति चुनौतियों का सामना करके, सेवा करके, आदर्शों के लिए प्रयास करके अपनी प्रतिभा को निखारता है।
अच्छा, इसी को शायद सेवा साधना कहा गया है पुस्तक में।
हाँ बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव इसे ही सेवा साधना कहते हैं। इसमें अच्छी प्रवृत्तियों, सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाना और जो गलत आदतें हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन्हें हटाना शामिल है। ये एक तरह से समय की पुकार को सुनना है, मानो महाकाल का आवाहन हो कि भाई उठो और इस बड़े बदलाव में अपना योगदान दो।
तो कुल मिलाकर योग की मांग, प्रतिभा परिष्कार, भाग एक का सार यही लगता है कि आज का समय हम सबसे यही मांग कर रहा है कि हम अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानें, उन्हें निखारें और सिर्फ अपने निजी स्वार्थों तक सीमित ना रखें, बल्कि समाज के व्यापक हित में लगाएं।
बिल्कुल सही कहा आपने। पूज्य गुरुदेव के अनुसार प्रतिभा सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति का ही साधन नहीं है, बल्कि ये समाज में, समूह में एक सकारात्मक बदलाव लाने का एक बहुत शक्तिशाली, अचूक साधन है। और ये कोई बाहरी इनाम नहीं है जो किसी को मिल जाता है, बल्कि जब व्यक्ति खुद उत्कृष्टता से, ऊंचे आदर्शों से जुड़ता है, तो प्रतिभा का ये अनुदान उसे अपने आप मिलने लगता है, विकसित होने लगता है।
तो चलिए, जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। पुस्तक में हमारे अंदर के जिस असीम विद्युत भंडार का जिक्र है, मतलब हमारी जो अपार ऊर्जा है, क्या हम उसे सिर्फ रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतों में ही खर्च करते रहेंगे, या फिर उसे जगाकर इस युग की जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका सामना करने और कुछ नया, कुछ बेहतर रचने में लगाएंगे।